नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गर्मियों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के तत्काल एहतियाती उपाय करने को कहा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। कांग्रेस ने अपनी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख अजय राय को वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ाई। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में जैसे मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर गर्मी के महीनों के दौरान अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए तत्काल एहतियाती उपाय करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि गर्मी के महीनों में तापमान बढ़ने के कारण अस्पताल में आग बड़ा खतरा बन जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे राज्य स्वास्थ्य विभागों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को एक साथ मिलकर काम करने का निर्देश दें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई है। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों को अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट और अलार्म जैसे अग्निशमन उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित समिति के सदस्य और राज्यों के पदाधिकारी शामिल हुए। समिति ने 3 घंटे से अधिक समय तक उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया। कांग्रेस ने अपनी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख अजय राय को वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने कल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। सांसद दानिश अली यूपी की अमरोहा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कार्ति चिदम्बरम शिवगंगा से और मनकन टैगोर तमिलनाडु की विरुधनगर संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस ने सिक्किम विधानसभा चुनावों के लिए 18 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर सुचारू मतदान के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को राज्य की 5 लोकसभा सीट पर मतदान होना है। प्रदेश में सुगम निर्वाचन के लिए कुल 11,729 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 83 लाख से ज्यादा है, जो निर्वाचन में उम्मीदवारों का भाग तय करेंगे। इस बार राज्य के करीब 1,45,000 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। इस बीच राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर अभी तक 9 नामांकन हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार से उम्मीदवार व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना नामांकन भर लिया है। इस सीट पर हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी नामांकन भरा है। वहीं भाजपा के अजय टमटा ने अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र भरकर अपनी दावेदारी पेश की है। उधर कांग्रेस ने टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार और गढ़वाल सीट से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन पार्टी के किसी भी उम्मीदवार ने अभी तक अपना नामांकन नहीं भरा है। वहीं दूसरी ओर बसपा ने भी राज्य की 4 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लिए हैं। प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
जम्मू कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोले ने कल किश्तवाड़ जिले का दौरा किया। उन्होंने अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कर्मियों, चुनाव की आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्च के निगरानी दलों तथा अन्य हितधारकों के साथ भी विस्तृत विचार विमर्श किया। सिक्किम में एकमात्र लोकसभा सीट और राज्य विधानसभा की 32 सीटों के लिए एक साथ शांतिपूर्वक चुनाव कराने की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी आदानन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दिव्यांगजनों सहित सभी योग्य मतदाताओं द्वारा चुनाव के दिन स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में सुगमता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
सिक्किम में एकमात्र लोकसभा सीट और राज्य विधानसभा की 32 सीटों के लिए एक साथ चुनाव पहले चरण में आगामी 19 अप्रैल को होने वाले हैं। राज्य विधानसभा के लिए वोटों की गिनती आगामी 2 जून को होगी, जबकि एकमात्र लोकसभा सीट के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 18 से 19 वर्ष के 12,569 युवा मतदाता भी लोकसभा और विधानसभा के राज्य में एक साथ होने वाले इस चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस चुनाव में मतदाता 88 शहरी और 485 ग्रामीण मतदान केंद्रों सहित 573 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इबन शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
उधर केरल के त्रिशूर में आम चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है, जिसमें रोबोट के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। मतदाता साक्षरता का ये अभिनव प्रयोग आयोजित किया जा रहा है।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्रीय समिति की नेता के कविता की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश कावेरी बगेचा ने कविता की रिमांड पूरी होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद ये आदेश पारित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में प्रतिबंधित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। चेकिंग के दौरान संयुक्त बल ने कल शाम एक वाहन की तलाशी के दौरान आतंकवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये लोग प्रतिबंधित गुट जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन नौगाम में संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किए गए हैं। आगे की जांच जारी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सिंगापुर में दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान के कार्यक्रम में डॉ. जयशंकर ने कहा कि हर देश अपने पड़ोस में स्थिरता चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक ऐसी पड़ोसी से निपटने की चुनौती है जो खुलकर आतंकवाद को सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करता है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर सिंगापुर में हैं। रूस ने आतंकी हमले में मृतकों की संख्या 133 हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस हमले पर दुख व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और सभी देशों से आह्वान किया है कि वे इस हमले के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए रूस की सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों की सहायता करें। दिल्ली में अर्थ आवर के अवसर पर कल रात 8:30 से 9:30 बजे के बीच अनावश्यक बिजली और बिजली के अन्य उपकरण बंद करके 206 मेगावाट बिजली बचाई गई। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने के लिए हर वर्ष 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल देशवासियों से भारत को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने टीबी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे क्षय रोग को नियंत्रित करने की चुनौतियों के बारे में लोग जागरूक हो सकेंगे। कश्मीर घाटी स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पर्यटक इस वर्ष विभिन्न किस्मों के 17 लाख फूलों को देख सकेंगे। इस साल 5 नए ट्यूलिप पुष्प भी दिखाए जाएंगे। पिछले साल 3,65,000 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इस उत्सव में शामिल हुए थे। आईपीएल क्रिकेट में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात्र 4 रन से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत के लिए 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 204 रन बनाए। इससे पहले कल दिन के पहले मैच में पंजाब किंग्स ने चंडीगढ़ में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से पराजित किया। आज दोपहर 3:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। भारतीय स्टार शटलर किदांबी श्रीकांत कल स्विट्जरलैंड के बेसल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। श्रीकांत 1:05 मिनट तक चले पुरुष एकल सेमीफाइनल में लिन चुन ही से 21-15, 9-21, 18-21 से हार गए। किदांबी श्रीकांत के बाहर होने के बाद स्विस ओपन में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। मौसम विभाग ने 26 मार्च तक पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के हिमालयवर्ती क्षेत्र में गरज के साथ आंधी तूफान और बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में अगले 2 दिन में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली चमकने और आंधी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 29 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज आंधी आने का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
नमस्कार चंद्रिका। आज प्रकाशित अखबारों ने राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की सूची तथा चुनावों को देखते हुए बैठकों के दौर का विस्तार से उल्लेख किया है। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल को दैनिक ट्रिब्यून और जनसत्ता ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री के भूटान दौरे की चर्चा अमर उजाला सहित अखबारों के पहले पन्ने पर है। रूस में हुए आतंकी हमले को हरी भूमि और राष्ट्रीय सहारा सहित लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर विस्तार से दिया है। पत्र लिखता है 2 दशक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला, रॉक बैंड के संगीत के बीच मची भगदड़ और चीत्कारें, राष्ट्रपति पुतिन बोले खोज कर मारेंगे। देशबंधु ने लिखा है पुतिन ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, विश्वभर के नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है हमले के बाद मॉस्को में अस्पतालों में खून देने उमड़े लोग। अमर उजाला और दैनिक ट्रिब्यून की खबर है कि केंद्र ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ाई। नवभारत टाइम्स ने खबर दी है कि बस और मेट्रो से चलने वाले होली के दिन दोपहर बाद ही सफर करेंगे। हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर ब्रज क्षेत्र की होली के रंग बिरंगे चित्र के साथ शीर्षक दिया है उरत गुलाल लाल भय बदरा मारत भर भर झोरी रे रसिया। उधर हरिभूमि में अयोध्या में होली का त्योहार मनाए जाने के साथ लिखा है रामलला संग पहली होली। राजस्थान पत्रिका ने सूरज ने खेली धरती संग होली शीर्षक देते हुए बड़े से चित्र के साथ लिखा है नमक की क्यारियों में कुदरत ने भरे रंग। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध सांबा झील के किनारे नमक की क्यारियों में जब सूर्य की किरणें पड़ी तो ऐसा लगा मानो कुदरत ने सतरंगी चूनर ओढ़ ली।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गर्मियों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के तत्काल उपाय करने को कहा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। कांग्रेस ने अपनी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख अजय राय को वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।